सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धियेलथ सौवथा तिह्वणशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिह्वणभवनपसर्य पच्छखवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अर्हन्तदिवाय रोजयौ तिरयणखगणिहाये णुत्तार्यमोहसेणशिरणिवहो आयिर्यरावुपशियौ परिवालिय भवियजियलो अण्णाणन्धयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणम् उज्जोजेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिव्वति सा विनडिय तिहुवण भवियाण सुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सौवे शिवसुहपः सण्ठियाहुनिगलियभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नवमी पुस्तक जो चतुर्थ खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार अभी हम देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 103 पर आ गए हैं। यहाँ अभी हम 44 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। नमो वर्धमान बुद्ध ऋषिस्स, वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो। ये बुद्ध यानी वो गौतम बुद्ध की बात नहीं है, तो ये केवल ज्ञानी है, इसलिए इसको बुद्ध कहा है। क्या लें तो वर्धमान जो अंतिम तीर्थंकर है उनकी बात यहाँ कह रहे, वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो। शंका, जबकि वर्धमान भगवान को पूर्व में नमस्कार किया जा चुका है, तो फिर यहां दोबारा नमस्कार किस लिए किया गया है? उसका समाधान, जिसके समीप धर्म पथ प्राप्त हो उसके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिए। लौकिक में भी थोड़ा कुछ हमें लाभ मिलता है तो हम उसके साथ कितना आदर से व्यवहार करते हैं, और यहाँ तो भव के अभाव करने की बात जिनसे हमें मिलती है, धर्म पथ प्राप्त होता है तो उनके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिए, तथा उनका शिर आदि पांच अंग एवं काय वचन और मन से नित्य ही सत्कार करना चाहिए। यानी नमस्कार, जिसको पंचांग या अष्टांग भी कहते हैं, सिर है, फिर हाथ है, पैर है, यानी घुटने भी टेकते हैं जमीन पर, ये हाथ यहाँ भी हाँ टेकते हैं और माथा भी टेकते हैं, तो ये पांच अंग हो गए। काय वचन और मन, ये सबको मिलकर हम आठ अंग भी कहेंगे, इनसे नित्य ही सत्कार करना चाहिए। इस आचार्य परंपरागत नियम को बतलाने के लिए पुनः नमस्कार किया गया है, वो लिए हुआ है, लिए करना। मुनिराज भी जो स्वयं पंच परमेष्ठी पद में अरूढ़ है, उन्हें भी नित्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आचार्य परम, ये मुनियों के लिए बताए ना, अभी गौतम गणधर वहां नमस्कार कर रहे हैं, तो वे स्वयं नमस्कार कर रहे हैं, अन्य मुनियों को भी, उनके जो हमने देखा था आवश्यक क्रिया, अभी प्रवचन सार में जो बात चल रही है वहां पर, तो यहाँ कहते हैं बारंबार उनको नमस्कार किया गया है। शंका, निबद्ध और अनिबद्ध भेद से मंगल दो प्रकार है, उनमें से यह मंगल निबद्ध है अथवा अनिबद्ध। यह मंगल जो है नमो जिनानम आदि जो हम यहाँ नमस्कार कर रहे हैं सबको, तो ये निबद्ध मंगल है क्या अनिबद्ध है? निबद्ध यानी जिसने कोई नई शब्द रचना की उसको निबद्ध कहते हैं, अनिबद्ध यानी जो परंपरा से चला आ रहा है उसको अनिबद्ध कहते हैं। उसका समाधान, यह निबद्ध मंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि कृति आदि 24 संयोग द्वार रूप अवयवों वाले महाकर्म प्रकृति प्रावृत के आदि में गौतम स्वामी ने इसकी प्ररूपना की है। देखो, हमने वो आगम के भेद अलग अलग देखे थे, तो महाकर्म प्रकृति प्रावृत जो है उसके 24 अनुयोग, उसके अलग अलग भेद हैं, उसमें से कृति एक अनुयोग द्वार है, उसके आदि में गौतम स्वामी ने ही इसकी प्ररूपना की। उन्होंने ऐसा नमस्कार करके ऐसे शब्द वहाँ लिए हैं। और भूतबली भट्टारक ने वेदना खंड के आदि में मंगल के निमित्त इसे वहां से लाकर स्थापित किया है। अब ये वेदना खंड है ना, ये हमने पढ़ते हैं ना रोज, हमने यहाँ कृति अनुयोग द्वार के ऊपर क्या लिखा है देखो, चतुर्थ खंड, इसका नाम ही वेदना खंड है। देखो, कदि अनुयोग द्वार लिखा है मंगलाचरण के ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखा है, तस्य चतुर्थे खंडे वेयण आए। ये वेदना खंड है, चतुर्थ खंड वेदना खंड, ये हमारी जो हम रोज पढ़ते हैं उसका नाम है वेदना खंड। अब ये वेदना खंड में जो शुरू में ये सारे ही मंगल किया है, नमो जिनानम या नमो, अभी जो सभी ऋषियों को नमस्कार किया है, वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है, तो जो कृति आदि 24 संयोग द्वार है वो महाकर्म प्रकृति प्रावृत के शुरू में गौतम गणधर ने इसकी रचना की थी, और वहां से उन्हीं शब्दों को लेकर यहाँ वेदना खंड में भूतबली आचार्य ने वो मंगल के निमित्त वहां से ही उठाकर वही शब्द यहाँ प्रस्तुत किए। अतः इसे निबद्ध मानने में विरोध है, यानी भूतबली की अपनी रचना नहीं है परंतु गौतम गणधर से चली आई। और वेदना खंड महाकर्मक प्रकृति प्रावृत है नहीं क्योंकि अवयव के अवयवी होने का विरोध है। क्या कहते हैं, वेदना खंड ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत का एक अवयव, एक अंश, एक अधिकार, एक चैप्टर है, वो पूरा अनुयोग नहीं है। जैसे समुद्र का पानी हमने एक लोटे में ले लिया भरकर, तो लोटे भर पानी वो पूरा समुद्र नहीं हो सकता, वैसे अवयव जो है, अंश जो है, उसको अवयवी नहीं मान सकते, उसमें कुछ तो डिफरेंस है ना, भले समानता भी कुछ हो परंतु अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और न भूतबली गौतम ही है, और भूतबली वो अलग है और गौतम गणधर अलग है, भूतबली गौतम हो ये भी बात नहीं है। यदि अपने ही किसी ग्रंथ में से कोई श्लोक या गाथा अन्य ग्रंथ में लिख देवे, जैसे कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों में कोई गाथा ऐसे है कि, तो प्रवचन सार में भी आती है, समय सार में भी है, वो अलिंग ग्रहण आदि जो आती है, तो वो स्वयं अगर दूसरी जगह लिखे थे तो उनकी ही रचना है, तो उसको हम कह सकते हैं इन्हीं की रचना है। वैसे गणधर अलग है और ये भूतबली अलग है, एक ही जीव अलग अलग ठिकाने वही गाथा लिखते तो हम कह सकते कि ये उनकी अपनी रचना है, परंतु भूतबली ने मूल गौतम की जो रचना है वहां से इसको लिया है, इसलिए इसको निबद्ध कहा। अनिबद्ध, वो अपनी उनकी निबद्ध नहीं है, बराबर, मैं दूसरे विचार कर रही थी।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो गौतम गणधर ने बात कही है वही बात यहाँ पर भूत बलि कर रहे हैं। तो जो भूत बलि है वो गौतम गणधर की जितने मतलब उनका ज्ञान का उघाड़ नहीं है, ये भी बात यहाँ बता रहे। और जो गौतम गणधर है वो भूत बलि नहीं है, क्यों अवयव अवयवी नहीं हो सकता, ये जो बात है इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया।
और वे दोनों ही अलग अलग है ना, भूत बलि वो गौतम नहीं है, क्योंकि विकल श्रुत धारक, ये विकल श्रुत धारक कौन है? भूत बलि संपूर्ण श्रुत के धारक नहीं है, श्रुत के एक अंश के धारक है, क्योंकि उनके गुरु भी संपूर्ण श्रुत के धारक नहीं थे, धर्मसेन आचार्य भी, क्योंकि उनके पता चला कि अभी मुझे इतना ज्ञान है, इससे आगे और भी वो हीन होने वाला है, तब उन्होंने ये लिखकर यानी लिपिबद्ध कराया था शास्त्र को। तो विकल श्रुत धारक और धर्मसेन आचार्य के शिष्य भूत बलि को, यानी वो धर्मसेन आचार्य के शिष्य है भूत बलि, और विकल श्रुत के धारक है, छोटे से भाग के धारक है, उनको सकल श्रुत के धारक और वर्धमान स्वामी के शिष्य गौतम होने का विरोध है। और गौतम गणधर कैसे है? सकल श्रुत के धारक है और वर्धमान स्वामी महावीर भगवान के वे शिष्य है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा निबद्ध मंगलत्व का हेतुभूत और कोई प्रकार है नहीं है, यानी उसको निबद्ध मानने का अन्य कोई वहाँ हेतु नहीं दिखाई देता है, यानी वो अनिबद्ध है, ये बात यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अतः यह अनिबद्ध मंगल है, अथवा फिर कहते यह निबद्ध मंगल भी हो सकता है, किसी अपेक्षा से उसको निबद्ध भी कह सकते हैं। शंका, वेदना खंडादि स्वरूप खंड ग्रंथ के महाकर्म प्रकृति प्रावृत्पना कैसे संभव है? अभी उल्टा पूछ रहे हैं, अवयव जो है वो अवयवी कैसा हो सकता है? वेदना खंड है, वो खंड ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ का एक खंड, एक हिस्सा, एक भाग है, उसके महाकर्म प्रकृति प्रावृत्पना कैसे संभव है? ये नए चक्र में ये इसी बात उठाई है कि समुद्र का जो जल है हमने लोटे में लिया या किसी बर्तन में रखा, वो समुद्र है कि असमुद्र है? वो तो समुद्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी देखा था वो तो लोटे भर पानी है, परंतु क्या असमुद्र है? तो असमुद्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि उसको असमुद्र मानेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोटों का समुदाय, अनेक अंशों का समुदाय, वो भी असमुद्र ही रहेगा, इसलिए सर्वथा नहीं मान सकते। अब उल्टी अपेक्षा ले रहे, वो सर्वथा भिन्न भी नहीं है, क्योंकि उसी का वो अवयव है, ये बात अब यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उसका समाधान नहीं, क्योंकि कृति आदि 24 संयोग द्वारों से एकांततः पृथकभूत यानी सर्वथा पृथकभूत सर्वथा भिन्न महाकर्म प्रकृति प्रावृत का अभाव है, वो उसी का एक पार्ट है, उसके वो सर्वथा भिन्न नहीं है। अब शंका, इन अनियोग द्वारों को कर्म प्रकृति प्रावृत स्वीकार करने पर बहुत प्रावृत होने का प्रसंग आवेगा, यानी इस एक खंड को अगर हम पूरा प्रावृत कहेंगे तो 24 अनियोग द्वारे तो 24 प्रावृत हो जाएंगे। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कथनचित इष्ट ही है, किसी अपेक्षा से हम उसको कह सकते हैं। शंका, महाप्रमाण वाली वेदना के उपसंहार रूप इस वेदना खंड के वेदना पना कैसे संभव है? ये जो महाप्रमाण वाली वेदना ये इस खंड का, इस ग्रंथ का नाम है, तो ये महाप्रमाण है, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है, और उसका उपसंहार रूप, उसका शॉर्ट अभी यहाँ बताया इसमें। हाँ, वेदना खंड है ना, जो वेदना नाम का मूल महाप्रमाण है उसका उपसंहार है, उसका तात्पर्य, उसका छोटा सा रूप है, ये संक्षेप रूप है। ऐसे ये जो वेदना खंड है उसमें ये वेदनापना कैसे हो सकता है, उसको हम वेद ये छोटे खंड को हम पूरा वेदना अधिकार कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो संक्षेप से बात है। समाधान नहीं, क्योंकि अवयवों से सर्वथा पृथकभूत अवयवी पाया नहीं जाता। अभी ये हमने अभी जो समुद्र का उदाहरण भी देखा था, या वृक्ष का कोई एक अवयव है तो उससे सर्वथा वृक्ष पृथक नहीं है और उससे भिन्न कोई वृक्ष नहीं पाया जाता। वही बात कहते हैं अवयवों से सर्वथा पृथकभूत। अभी कथनचित लगावे तो लगावे, कथनचित अपेक्षा लेंगे तो उसमें भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, पृथकपना भी और नहीं भी है। यदि कहा जाए इस प्रकार से बहुत वेदनाओं के मानने का अनिष्ट प्रसंग आवेगा सो भी नहीं है, क्योंकि वैसा इष्ट ही है। वो भले अनेक उसके अधिकारों को आप वेदना कहो तो भी कोई बात नहीं है, वो कह सकते हैं। हर एक अलग अलग अवयव को भी हम वेदना नाम से पुकार सकते हैं। शंका, भूत बलि के गौतमपना कैसे संभव है? अब कहा तो ये वेदना नाम का जो खंड है उसको तो वेदना अधिकार पूरा ही ग्रंथ कहो तो कहो, परंतु भूत बलि तो उसको तो गौतम नहीं कह सकते। पहले डिफरेंस क्या था वो उन्होंने सिद्ध किया था, अब उसको वही कहने में कोई दोष नहीं कह रहे। निबद्ध भी कह सकते हैं, ये बात हो रही ना, तो निबद्ध कहेंगे तो जो गौतम ने रचना की इन्होंने बताई तो ये दोनों तो एक तो है ही नहीं है, तो उनमें एकता कैसे संभव है? अब प्रति आचार्य स्वयं प्रतिशंका शंकाकार को ही पूछते हैं, उनके गौतम होने से क्या प्रयोजन है, या उनको गौतम मानने की क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन से आप उसको गौतम सिद्ध करना चाहते हो? प्रतिशंका समाधान ये शंकाकार दे रहा है, क्योंकि भूत बलि को गौतम स्वीकार किए बिना मंगल के निबद्धता बन ही कैसे सकती है? फिर शंका समाधान नहीं, क्योंकि भूत बलि के खंड ग्रंथ के प्रति कर्तृत्व का अभाव है, यानी वो उनका किया हुआ नहीं है। उन्होंने बताया है परंतु जो आगम परंपरा चली आई है उसी को उन्होंने लिपिबद्ध कराया है, वो उनकी अपनी कृति तो है नहीं, अपना उसके रचना तो है नहीं, उनकी रचना तो मूल में भगवान ये गौतम गंधर्व की है, और दूसरे के द्वारा किए गए ग्रंथाधिकारों के एक देश रूप पूर्वोक्त शब्दार्थ संदर्भ का प्ररूपक करता हो नहीं सकता, क्योंकि अति प्रसंग दोष आता है। क्या कहते हैं देखो, दूसरे के द्वारा किए गए ग्रंथाधिकारों के, ये गौतम गणधर के द्वारा ग्रंथों की रचना की थी, दूसरों ने की है, उसके एक देश रूप उसका पार्ट जो है पूर्वोक्त शब्दार्थ संदर्भ, पूर्वोक्त ने अभी जो हमने सूत्र देखे हैं अलग अलग जो है मंगल जो यहाँ किया है, उन शब्दार्थों का जो संदर्भ है उसका प्ररूपक भूत बलि उसके प्ररूपक है, बताने वाले हैं, वो शब्दों को रचने वाले नहीं है, क्योंकि जो मूल ग्रंथ में शब्द थे वे ही उन्होंने यहाँ लिए, थोड़े लिए उसमें से, तो मूल कर्ता तो गणधर ही कहेंगे हम, भूत बलि तो उसके प्ररूपक है, बताने वाले हैं। यदि वो कर्ता मानेंगे तो अति प्रसंग दोष आएगा, वे भी कर्ता और ये भी कर्ता, ऐसा हो जाएगा ना। अथवा और फिर दूसरी अपेक्षा भी बताते हैं, भूत बलि गौतम ही है क्योंकि दोनों का एक ही अभिप्राय रहा है, एक अभिप्राय की अपेक्षा दोनों में समानता, दोनों में एकता, दोनों में अभिन्नता भी कह सकते हैं, इस कारण निबद्ध मंगलत्व भी सिद्ध है। पहले अनिबद्ध मंगल ही ऐसा कहकर उन्होंने बिल्कुल उसको दलील उसकी प्रस्तुत की, अब दूसरा पक्ष भी बताया कि निबद्ध भी इसके कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं उसका भी कारण बताया, क्योंकि अपेक्षित कथन होता है अपेक्षा सहित, अनिबद्ध के लिए क्या अपेक्षा है और निबद्ध कहने के लिए क्या अपेक्षा है, ये दोनों उन्होंने बता दिए। शंका, आगे कहे जाने वाले तीनों खंडों का मंगल है क्योंकि वर्गणा और महाबंध इन दो खंडों के आदि में मंगल नहीं किया गया है, और भूत बलि भट्टारक मंगल के बिना ग्रंथ का प्रारंभ करते नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके अनाचार्यत्व का प्रसंग आता है, अनाचार्यत्व का प्रसंग आता है, क्योंकि ग्रंथों के आदि में मंगल करने की ही पद्धति है ही है। ये दो बार शंका, अच्छा वही शंका भी चालू है। वेदना खंड के आदि में कहा गया मंगल, शेष दो खंडों का कैसे हो सकता है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि कृति अनुयोग द्वार के आदि में कहे गए इसी मंगल की शेष 23 अनुयोग द्वारों में प्रवृत्ति देखी जाती है। ये 23 24 है ना अनुयोग द्वार, तो ये पहला अनुयोग द्वार है, उसके स्टार्टिंग में उसके आदि में जो मंगल किया है उसकी अनुवृत्ति आगे भी हर एक में समझ लेना चाहिए। फिर शंका, महाकर्मक प्रकृति प्रावृत रूप से 24 अनुयोग द्वारों के कोई भेद न होने से उनके एकता है, क्योंकि वो एक ही प्रावृत के अंश है, उस अपेक्षा से सब में एकता है। अतएव वहाँ एक ग्रंथ का एक मंगल विरोध को प्राप्त नहीं होता। यदि पूरे ग्रंथ का मंगल कहो तो कहो, क्योंकि महाकर्म प्रावृत के वो मंगल है ऐसा कहेंगे तो बात सिद्ध होती है, परंतु इन तीन खंडों की एकता नहीं है। ये तीन खंड अलग अलग है, अभी जो षट खंड है ना, अभी हमारा चौथा खंड चल रहा है, चौथे खंड है, तो चौथा पांचवा और छठा, ये तीन खंडों की तो एकता नहीं है। महाकर्म प्रकृति प्रावृत पूरा एक ग्रंथ आप कहेंगे तो उसकी अपेक्षा तो हम कह सकते कि वो एक है, और आदि में मंगल किया तो वो सब अन्य 23 अनुयोग द्वारों में वो समझ लेना, परंतु ये तीन खंड तो भिन्न भिन्न है। तो कहते ये तीन तो भिन्न है, क्योंकि ऐसा होने पर उनके एक खंड बने का प्रसंग आता है, तीनों को मिलकर एक मंगल कहेंगे तो एक ही खंड हुआ, तीन कहाँ हुए? प्रश्न ख्याल में आया ना? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि महाप्रकृति प्रावृत रूप से इनके भी एकता देखी जाती है। ये तीन खंड है वे भी महाकर्म प्रकृति प्रावृत के ही भेद है, तो उस अपेक्षा से उनमें भी एकता है। फिर शंका, कृति स्पर्श कर्म और प्रकृति अनुयोग द्वारों की भी तो यहाँ प्ररूपणा की गई है, उनकी खंड ग्रंथ संज्ञा न करके तीन ही खंड ऐसा किस लिए कहा जाता है? ये 24 अनुयोग द्वार है, उसमें ये भिन्न भिन्न नाम भी उन्होंने कुछ बताए हैं, तो उनको खंड ग्रंथ ऐसा नहीं कहने पर केवल तीन ही खंड क्यों किए हैं? समाधान, नहीं क्योंकि उनकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता की अपेक्षा तीन ही खंड बताए। फिर शंका, वह भी कहां से जाना जाता है? उसका समाधान, इस संक्षेप में की गई प्ररूपणा से जाना जाता है। संक्षेप में तीन ही खंड बताए ना, इसी से ख्याल में आता है कि ये तीनों की प्रधानता है, अन्य को वहां गौण रूप से है वे, उसका अभाव ये बात नहीं है, परंतु प्रधानता इन तीनों की है। यह सब मंगल दंडक देशामर्शक है। मंगल दंडक यानी मंगलों का जो समूह हमने देखा था, इतने सारे, नमो जिनानम से शुरू किया था, नमो जिनानम नमो ओहि जिनानम नमो परमो हि जीवनानम आदि आदि सब, तो ये मंगल दंडक देशामर्शक है, क्योंकि निमित्तादि का सूचक है। इस कारण यहाँ मंगल के समान निमित्तादि की प्ररूपणा करना चाहिए। वह इस प्रकार से, देखो ये ग्रंथ के शुरू में हमने धवला पहले भाग में बहुत विस्तार से ये देखा, शुरू में मंगल होता है, निमित्त होता है, वो फिर उसके ग्रंथ कितना बड़ा होगा, उसके प्रयोजन क्या है, हाँ है तो उसके को कहते हैं, उसका विषय क्या है, ये सब छह बातें बतानी पड़ती है शुरू में ही। तो अब यहाँ कहते हैं निमित्त क्या है, उसको भी कहेंगे किसके लिए बनाया ग्रंथ। वह इस प्रकार से ग्रंथावतार नहीं, ग्रंथावतार चाहिए, ग्रंथ का अवतार है ना, ग्रंथ क्या जो बनाए गए उसकी जो रचना हुई, ग्रंथावतार के निमित्त शिष्य है, शिष्यों के निमित्त से इसकी रचना हुई है। क्योंकि वचनों की प्रवृत्ति पर के निमित्त ही देखी जाती है। स्व को समझना है तो वचनों की कोई जरूरत नहीं है। वचनों की प्रवृत्ति जो उपदेश आदि जो होते हैं वो तो पर के निमित्त होते हैं। शंका, यह शास्त्र किस हेतु से पढ़ा जाता है? बोले दूसरों को उपदेश मत देना, पर ये पढ़ते क्यों है? पढ़कर तो स्वयं को समझता है ना, तो मोक्ष के हेतु से पढ़ा जाता है। शंका, स्वर्गादिक का उपाय क्यों नहीं है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि वहां अत्यंत दुख का अभाव होने से संसार का कारण रूप सुख है। दूसरी बात यह है कि राग को छोड़कर वहां सुख है भी नहीं। क्या कहते हैं, स्वर्ग की बात है ना, यानी वहां संसार का कारण रूप सुख है। वहां का सुख कैसा है? संसार के कारणभूत है। और मोक्ष का सुख कैसा है? वो संसार का अभाव होकर वो प्राप्त हुआ है। वहां फिर दोबारा संसार की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, राग को छोड़कर वहां सुख है भी नहीं। ये बस राग है, वहां ये सारी सामग्री प्राप्त है और वहां उसको भोगने की इच्छा भी है। परिमाण कहा जाता है। पहले क्या बताया, मंगल कहा, फिर निमित्त, अब कह रहे परिमाण यानी ग्रंथ का प्रमाण। परिमाण कहा जाता है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट कह रहे हैं अभी। ग्रंथ परिणाम है, परिमाण चाहिए। देखो, ग्रंथ परिमाण और अर्थ परिमाण के भेद से परिमाण दो प्रकार का है। ग्रंथ कितना बड़ा है उसको ग्रंथ परिमाण कहेंगे, और अर्थ परिमाण यानी उसमें कौन सा विषय वस्तु है उसको अर्थ परिमाण कहेंगे। उसमें ग्रंथ की अपेक्षा अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति व अनुयोग द्वारों से वह संख्यात है। ये श्रुतक ज्ञान के भेद जब हम देखेंगे, अभी इसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं है, उसके तो अक्षर ज्ञान कहा जाता है। एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर संबंधी ऐसे एक एक अक्षर बढ़ते हुए तो संख्यात अक्षर चाल होने पर उसका उतने अक्षरों का एक पद होता है। याद है कितने अक्षरों का एक पद होता है? पनट्टी माइनस वन तो सब पूरे अक्षर है। एक पद में कितने होते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही मध्यम पद की संख्या कितनी होती है? हाँ हाँ हाँ, 1634,83,07,883 क्या है ना, 888 होगी मेरे ख्याल से, इसमें होना चाहिए। शतक ज्ञान के भेदों में है चर्चा इसकी। शुद्ध ज्ञान वाला जो है ना 500 के आजू बाजू कहीं होगा। हाँ, 400 के देखो, ये 482 पृष्ठ पर, ये मध्यम पद कहते हैं। जिन पदों के द्वारा ग्रंथों की रचना होती है उसको पद कहते हैं। परसों हमने देखा था पद के तीन भेद हैं, एक अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। प्रमाण पद यानी किसी श्लोक है, कोई गाथा है, कोई शार्दूल विक्रीड़ित छंद है, मंदाक्रांत है, उसके अपने अपने नंबर ऑफ अक्षर निश्चित होती है। किसी में 8-8-8 का होगा, किसी में 16-16 अक्षर होगी, जो कुछ है, तो उसको प्रमाण पद कहते हैं। अर्थ पद यानी शब्दों से वाक्य रचना होती है और हमें कुछ अर्थ भाषित होता है तो उसको अर्थ पद कहते हैं। और यहाँ प्रमाण पद की बात है, तो प्रमाण पद किसको कहना? कि जो अपुनरुक्त अक्षर जितनी है जिनसे बनाया है उसमें अपुनरुक्त, एक बार हुआ तो उसका एक बार काउंट करना, फिर दोबारा 10 बार भी आवे तो भी एक बार उसको, जैसे अ अक्षर 1000 बार भी आए फिर भी उसको एक बार गिनना। ऐसे अपुनरुक्त अक्षर कितने होते हैं, जब पद होता है तो 1634,83,07,888। ये मुझे भी 88 के 83, मेरा भी घोटाला हो रहा था, 888। यानी एक 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 बढ़ते हुए अक्षरों से इतने अक्षर हो जाए तब एक पद, हर एक पद इतने अक्षरों का, ऐसे इतने इतने पद हो जाएंगे तब जाके संघात होता है। देखो अभी हम थोड़ा देखते हैं, अभी ये 4 शब्द है ना, अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वार, इसका स्वरूप देखते हैं हम, यही से हम शुरू करते हैं 482 से। वहां तो हमने देखा था वो पद किसको कहना, फिर उसमें पद में एक अक्षर बढ़ेगा, ये 1634 करोड़ हमने देखा ना, 83,07,888, 88 के बदले 89 हो गए, एक अक्षर बढ़ गया, पद के ऊपर एक अक्षर बढ़ा, फिर पद के ऊपर 2 अक्षर बढ़े, पद के ऊपर 3 अक्षर बढ़े, इस तरह से बढ़ते 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 जब वो पद अक्षर 2 गुना होगा तो 2 पद हुए, 1634,83,07,888 और उसमें अक्षर बढ़ गए तो 2 पद हो गए ना, पदों की संख्या 2 हो गई, फिर एक 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 अक्षर से बढ़ेगा पदों की संख्या 3 हो जाएगी, फिर एक 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 अक्षर से बढ़ेगा पदों की संख्या 4 हो जाएगी। तो ऐसे संख्यात 1000 पद हो जाने पर संघात नाम का श्रुत ज्ञान है, संख्यात 1000 पद हो और एक एक पद के अक्षर हमने गिने हैं, और ये प्रत्येक एक एक अक्षर से बढ़ते हुए, जैसे हमने देखा था लाख, फिर उसमें एक एक रुपए बढ़ते जाओ तो 2 लाख, फिर और एक एक रुपए बढ़ते जाओ तो 3 लाख, ऐसे एक पद, फिर एक एक अक्षर बढ़ते हुए दूसरा पद हुआ, फिर एक एक अक्षर बढ़ते हुए तीसरा पद, ये बीच वाले जो सारे ही भेद है ज्ञान के, तो उसको कहेंगे संघात समास ना, पद समास, पद समास होगा। नहीं नहीं, उसके पहले का बता रहे, संघात में एक अक्षर कम तक सब, उसको क्या कहेंगे, पद समास कहेंगे। एक अक्षर को हमने अक्षर ज्ञान एक शुरू किया, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, कितने तक, 1634,83,07,887 तक, जितने वे अलग अलग अक्षरों के भेद है तो उसको अक्षर समास कहेंगे, वो भी ज्ञान के भेद है ना, और जब उसने हो जाएगा एक पद जितना तो उसको पद ज्ञान कहेंगे, उसको पद कहेंगे, पद में एक 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 अक्षर मिलाते जाओ, ये सारे अभी पद समास हो जाएंगे, तो 2 पद हुए, 3 पद हो गए, 4 पद, 5 पद, 6 पद, कितने संख्यात 1000 पद हो जाते हैं। तो जब आखिर का जो कौन सा है, वो संघात नाम का ज्ञान का भेद होता है, पदों का समूह उसको संघात कहते हैं। हाँ, 483 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। अभी संघात के बाद संघात समास हो गए, वहां भी एक एक अक्षर से बढ़ेगा, यानी संघात प्लस एक अक्षर प्लस 2 अक्षर प्लस 3 अक्षर, संघात प्लस एक पद, संघात प्लस 2 पद, ऐसे संख्यात 1000 हो जाएंगे पद, तब 2 संघात जितना हो जाएगा ना, एक संघात इतना और एक बड़ा, ऐसे बढ़ते 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 संख्यात 1000 संघात होने पर प्रतिपत्तिक नामा श्रुत ज्ञान होता है, यानी संघात से लेकर प्रतिपत्तिक तक बीच वाले जितने एक एक अक्षर से बढ़ते हुए सभी भेद है उसको संघात समास कहेंगे। अक्षर से शुरू किया था अक्षर, फिर अक्षर समास, फिर पद, संख्यात 1000 पदों का एक संघात, और संख्यात 1000 पदों का संघातों का एक प्रतिपत्तिक। अच्छा, अब ये जो प्रतिपत्तिक भी संख्यात 1000 होते हैं, वो एक एक अक्षर से बढ़ते जाएंगे ना आगे भी, तो जाके अनुयोग नाम का श्रुत ज्ञान होता है। देखो 488 वो तो उसका तो नाम बताए सब इकट्ठे, हाँ 488 में उसके नाम बताए हैं सब। आगे भी बहुत है, अब प्रतिपत्ति का अनुयोग हो जाता है, संख्यात हजार प्रतिपत्तिकों का एक अनुयोग होता है। अब उसके आगे भी बहुत सारे भेद है, हर एक दो के भेद वो समास वाला से लगाना, अक्षर अक्षर समाज, फिर पद बाद पद समास, संघात संघात समास, संघात के बाद प्रतिपत्तिक, फिर प्रतिपत्तिक समास, फिर अनुयोग अनुयोग समास, इसी तरह आगे आगे समझना। अनुयोग के बाद प्रावृतक प्रावृतक होता है, उसके बाद प्रावृतक होता है, उसके बाद वस्तु होते हैं, और उसके बाद पूर्व है, ऐसे 9 भेद है, और हर एक के समास समास आगे लेंगे तो ऐसे 18 हो जाते हैं। और पहले दो हमने यहाँ नहीं लिए थे अक्षरों में, पर्याय और पर्याय समास, अक्षर के भी पहले अनक्षरात्मक ऐसे जो है, पर्याय और पर्याय समास ऐसे ज्ञान के भेद है। यहाँ किसकी बात है, अभी श्रुत ज्ञान की बात चल रही है ना, अपनी श्रुत संबंधी ग्रंथों की बात चल रही है, ग्रंथ का परिमाण, वो परिणाम का परिमाण करना परिमाण कहा जाता है। देखो पहले मंगल की बात की, फिर निमित्त की बात की, अब परिमाण यानी प्रमाण बता रहे, तो उसमें ग्रंथ का प्रमाण और अर्थ का प्रमाण बता रहे। सेकंड लाइन फिर पढ़ती हूँ, ग्रंथ की अपेक्षा अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति व अनुयोग द्वारों से वह संख्यात है। हमने देखा ना, वो संख्यात है, काउंटेबल है ना, अक्षर भी हमने एक एक के इतने अक्षर है, पूरे श्रुत के अक्षर भी वो भी संख्यात है, असंख्यात तो है नहीं, इकट्ठी में एक कम करो ये तो संख्यात ही हो गया। अर्थ की अपेक्षा वह अनंत है, संख्यात शब्दों के द्वारा अक्षरों के द्वारा अनंत अर्थ भाषित होता है हमें, ये अर्थ प्रमाण की बात है। अथवा खंड ग्रंथ का आश्रय कर वेदना में 16,000 पद है, खंड की बात है ना, वेदना खंड, खंड ग्रंथ है ना, वेदना खंड में कितने हैं, 16,000 पद है, उनको जानकर कहना चाहिए। नाम की अपेक्षा वेदना यह गुण नाम अर्थात सार्थक नाम है। अब ये जाकर थोड़ा पहला भाग भी निकालना, वो नाम के भी अलग अलग बातें बताई थी, जो सार्थक नाम होता है उसको गुण नाम हो, उसके जैसे नृत्य करने वाले को नर्तक भी कहते, आदि आदि बहुत चर्चा हुई थी वहां पर, तो ये सार्थक नाम है, ये नाम की भी बात हुई, प्रमाण भी हुआ, नाम भी कह दिया उन्होंने। अब कहते हैं कर्ता दो प्रकार का है, कर्ता की बात कर रहे हैं भैया, एक अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता, उनमें अर्थकर्ता भगवान महावीर है, क्योंकि मूल अर्थों का जो सारी प्ररूपणा की है भगवान महावीर ने की है, उनके द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है। और ग्रंथ की प्रमाणता को बतलाने के लिए उसकी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से प्ररूपणा करते हैं, ग्रंथ की प्रमाणता है ना, वो प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है, इसको बताने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी प्ररूपणा करते हैं। महावीर का शरीर कैसा है, वह समचतुरस्र संस्थान से युक्त वज्र ऋषभ वज्रनाराच शरीर सहनन से सहित सुगंध युक्त गंध से तीनों लोकों को सुगंधित करने वाला, अपने प्रभा मंडल से सूर्य समूह को फीका करने वाला तथा समस्त दोषों से रहित है। पहले तो शरीर की बात कर रहे हैं, समचतुरस्र संस्थान वाला है, वज्र ऋषभ शरीर वाला है, नाराज सहनन वाला, सुगंध युक्त और प्रभा मंडल वाला। शंका, इस शरीर से ग्रंथ की प्रमाणता कैसे जानी जाती है? ये तो शरीर की बात हुई, हमें तो ग्रंथ की प्रामाणिकता प्रमाणता चाहिए, उसका समाधान। इसका उत्तर कहते हैं, वह शरीर निरायुध होने से, निरायुध का अर्थ क्या है? आयुध किसको कहते? निरायुध यानी शस्त्र रहित, जैसे अन्य अन्य देवताओं की जो कल्पना करते हैं ना अन्य मति लोग, तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र अस्त्र वगैरह तो होता है, कोई तलवारधारी है, कोई धनुष वाला है, कोई गदा वाला है। हाँ, तो यह शरीर निरायुध होने से क्रोध मान माया लोभ जन्म जरा मरण भय और हिंसा के अभाव का सूचक है। स्पंद रहित नेत्र दृष्टि होने से तीनों वेदों के उदय के अभाव का ज्ञापक है। क्या बात है! निराभरण होने से, ये निराभरण का अर्थ क्या है? आभरण यानी अलंकार। देखो निरायुध कहा, स्पंद रहित नेत्र दृष्टि, अब निराभरण होने से राग के अभाव को प्रकट करने वाला है। भ्रुकुटी रहित होने से क्रोध के अभाव का ज्ञापक है, क्योंकि हम क्रोधी होते तो भ्रुकुटी ऊपर चढ़ती है ना। बार बार पलटी खाना, नृत्य, हास्य, विदारण, अक्षसूत्र, जटा, मुकुट और नरमुंड माला को न धारण करने से मोह के अभाव का सूचक है। ये अन्य अन्य जो मतियों की बातें, जो कल्पनाएं हैं, उसका यहाँ निराकरण किया है। बार बार पलटी खाना, उसको ऊपर क्या लिखा है? देखो वग्गण लिखा है, वग्गण नच्चन हसन फोड़नख सुत्त यानी विदारण, जड़ा मऊड़ नर सिर माला धारण विरहा दो। ये पलटी खाना किसके लिए लिखा है पता नहीं, उसका ऊपर तो वग्गण का अर्थ किया उन्होंने, उसमें क्या लिखा है? वही होगा ना, और क्या? ठीक है, जो कुछ है। वस्त्र रहित होने से लोभ के अभाव का सूचक है। यहाँ तिर्यंचों के साथ व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि उनमें साधर्म्य का अभाव है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? तिर्यंच भी वस्त्र रहित है। कोई कहते हैं कि वस्त्र रहित होने से लोभ के अभाव का सूचक है, ऐसा कहो तो तिर्यंचों में भी लोभ का अभाव मानना पड़ेगा। ऐसा व्यभिचार, ऐसा दोष नहीं आता, क्योंकि उनमें साधर्म्य का अभाव है। मनुष्य और तिर्यंच में ऐसी समानता नहीं कि वो ये वस्त्र, वो तो मनुष्य सारे वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ लोभ है, कुछ लज्जा है, कुछ अन्य अन्य विकार है, परंतु तिर्यंचों में उसके साथ उस अपेक्षा से कंपेयर नहीं कर सकते। उनको बाह्य में कोई परिग्रह नहीं है, तो निष्परिग्रह नहीं कह सकते उनको। दरिद्रों के साथ भी व्यभिचार नहीं आता। अभी दरिद्री मानस कोई है, उसके पास भी कपड़ा नहीं पहनने को, तो उसके साथ भी वो कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि 108 लक्षणों से भगवान महावीर के दरिद्रता का अभाव जाना जाता है। परसों आई थी ना बात, तीर्थंकरों के 108 लक्षण होते हैं, चक्रवर्ती को 64 होते हैं और अर्धचक्री को, हाँ, बलदेव को 32 होते हैं। इसी पुस्तक में हमने 2 दिन पढ़ा शरीर के लक्षण आदि। न गृह छलियों के साथ व्यभिचार आता है। गृह छलिय ने गृह स्खलित अर्थात गृह भ्रष्ट मनुष्यों के साथ, घर छोड़ दिया है जिन्होंने, या घर से जो निकाले गए हैं, दोनों बातें हम कहेंगे ना, गृह स्खलित है ना जो घर से निकल चुके हैं। भ्रष्ट लिखा है मगर भ्रष्ट होना चाहिए कि गृह भ्रष्ट, ठीक है, क्योंकि 108 लक्षणों से जिनके तीनों लोगों का अधिपतित्व निश्चित है, वो चिन्ह ही बता रहे कि वो तीर्थंकर जीव है और तीनों लोगों के अधिपति है, उनके ग्रह स्खलन हो नहीं सकता, यानी कोई उनके घर से बाहर निकाल दे ऐसी बातें हो ही नहीं सकती, ये स्वयं त्याग कर चले जाते हैं। वह शरीर निर्विकार होने से समस्त दोषों के अभाव का सूचक है। अग्नि, विष, अशनि और वज्रायुधादिकों की बाधा न होने के कारण घातिया कर्मों के अभाव का अनुमापक है। ये कोई बाधा नहीं, कोई उपसर्ग नहीं होते उनको, ना अग्नि का, ना विष का, ना अशनि, यानी पत्थर होते हैं ना, अशनि नाम सुना है, ये अंतराल में से पत्थर गिरते हैं ना, उसको अशनि कहते हैं। हाँ, वो धूमकेतु आदि के पत्थर आके गिरते हैं ना, जो भ्रमण करते रहते हैं उसमें से बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं, उसको अशनि कहते हैं। वज्रायुध आदि की बाधा नहीं होती उनके, और वो क्या बताते हैं कि घातिया कर्मों का अभाव हो गया है। यहाँ विद्यावादियों से व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि सौधर्मेंद्र आदि देवों द्वारा जिसकी विद्या शक्ति छीन ली गई है, उसमें चूंकि पूर्वोक्त बाधाएं पाई जाती है तथा सकारण और अकारण बाधा भाव में साधर्म्य भी नहीं है। क्या कहते हैं, जो विद्यावादी है वो भी, उनके भी ऐसी बाधा नहीं हो सकती, ऐसे कह सकते, तो उसके साथ भी व्यभिचार नहीं आता, उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो विद्यावादी है, सौधर्म इंद्र उनकी विद्याएं छीन सकता है, परंतु इन्हें जो कुछ कोई बाधा नहीं पहुंचती, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कोई उससे छीन ले सकती। तो सौधर्म आदि देवों द्वारा जिसकी विद्या शक्ति छीन ली गई है, ऐसे कौन? विद्यावादी। उसमें चूंकि पूर्वोक्त बाधाएं पाई जाती है, अग्नि, विष, अशनि, वज्रायुध की बाधा उनमें पाई जाती है। कब? उनकी विद्या छीन लेने पर। इसलिए जैसे हमने पहले तिर्यंच के साथ व्यभिचार नहीं होता, दरिद्र के नहीं होता, यानी कंपैरिजन नहीं हो सकती, ऐसा कोई दोष नहीं आता। वैसे आप कहेंगे कि अग्नि की बाधा कोई विद्या वाले को भी नहीं हो सकती, परंतु उसकी विद्याएं सौधर्म आदि देव छीन सकते हैं, और तब वो बाधा उसकी पहुंच सकती है उसको। तथा सकारण और अकारण बाधा भाव में साधर्म्य भी नहीं है। ये जो बाधा का अभाव है ना, सकारण और अकारण, अभी इनके तो घातिया कर्म ही है नहीं है वहां पर, एक बात, और इनके तो विद्या के द्वारा वो प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते। विशेषार्थ, विद्यावादियों में बाधा भाव सकारण है, क्योंकि वहां उक्त बाधा भाव विद्या जनित है। बाधा भाव यानी बाधा का अभाव हो। ऊपर भी लिखा ना सकारण अकारण। सकारण यानी उन्होंने कुछ विशिष्ट विद्या हासिल की है, उसके कारण वो बाधा का अभाव है। लिखा ना, वो विद्या जनित है, विद्या उन्होंने हासिल की है, इसलिए उसको बाधा का अभाव है, न कि जिन भगवान के समान समान हुआ है। समान जिन भगवान को क्यों नहीं है उसके बाधा? तो न कि जिन भगवान के समान घातिया कर्मों के अभाव से उत्पन्न बाधा भाव जैसा स्वाभाविक, यही दोनों के बाधा भाव में, बाधा भाव में वैधर्म्य है। साधर्म्य के विरुद्ध वैधर्म्य, असमानता। उनकी जो बाधा का अभाव है, किनका? विद्यावादियों का, वो तो विद्या जनित है, और भगवान के जो बाधा का अभाव है वो घातिया कर्मों के अभाव से है। न देवों से व्यभिचार है, क्योंकि निरायुधादि विशेषणों से विशिष्ट उक्त शरीर के अग्नि, विष, अशनि और वज्रायुधादिकों से कोई बाधा नहीं होती है, ऐसे सविशेषण साधन का प्रयोग है। ये न्याय की भाषा सब चल रही है। सविशेषण साधन क्या कहते हैं, देवों से भी व्यभिचार नहीं आ सकता, जो निरायुध वगैरह कहा है। तो निरायुधादि विशेषणों से विशिष्ट उक्त शरीर के, यानी ये जिनेन्द्र भगवान की जो बात की, निरायुधादि विशेषण बताए ना उनके, अभी हम सब विशेषण उनके पढ़ते आए हैं। तो ऐसे शरीर के अग्नि विष अश्नि और वज्रायुधादि कौन से कोई बाधा नहीं होती है, ऐसा सविशेषण साधन का प्रयोग है। ये विशेषण देवों के लागू नहीं होंगे, कौन से निरायुध, स्पंद रहित, नेत्र दृष्टि, निराभरण, मृकुटि रहित, वस्त्र रहित, 108 लक्षण वाले, ये बाकी विशेषण उनके उनमें नहीं लागू होते, इसलिए देवों के साथ भी तुलना नहीं हो सकती। अथवा पूर्वोक्त हेतुओं से सूचित मोहाभाव के द्वारा, मोहाभाव ने मोह का अभाव, वह घातिया कर्मों के अभाव को प्रकट करने वाला है। मैंने पूर्वोक्त हेतु जो बताए वो तो है ही है, और मोह का अभाव है तो घातिया कर्मों के अभाव को वो प्रकट करने वाला है। वलित अर्थात कुटिल अवलोकन का अभाव होने से अपने समस्त जीव प्रदेशों पर स्थित ज्ञानावरण और दर्शनावरण के पूर्ण अभाव का सूचक है। अनंत ज्ञान है ना, उसके अनंत ज्ञान दर्शन, समस्त अवयवों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होने से अतीन्द्रिय ज्ञानत्व का सूचक है। क्षोभसम ज्ञानी कैसे विशिष्ट इंद्रियों के द्वारा, विशिष्ट अंगों द्वारा जानते हैं, अब ये तो समस्त अंग समस्त प्रदेशों से जानते हैं। तथा आकाश गमन से, प्रभा मंडल से परिवेष्टित होने के कारण, होने के कारण हुआ, यानी उनके आकाश गमन भी है, प्रभा मंडल से परिवेष्टित है होने के कारण, तथा त्रिभुवन रूप महल में फैलने वाली अपनी सुरभित गंध से अमानुषता का ज्ञापक है। ये अभी तो शरीर का ही वर्णन चल रहे हैं सब। निरामय होने के कारण, निरामय किसको कहते हैं, आमय का अर्थ क्या होता है, सर्वे भवन्तु निरामय, रोज एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं ना बीमा वालों की, निरामय है ना, क्या संस्कृत वाले कोई नहीं है, हम तो निरामय होना चाहते हैं, रोज के रोज डॉक्टर के पास जाते हैं। रोग रहित आमय ने रोग, वो आता है ना सर्वे संतु निरामया, वो आपने शायद वचन सुना होगा, निरामय होने के कारण और अपनी पुष्ट होने के कारण, अपनी पुष्टि होने के कारण, जिनके भूख और प्यास का अभाव जाना जाता है, अथवा ये प्रत्येक अलग हेतु नहीं है किंतु इनके समूह रूप एक हेतु है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये शरीर कैसा कैसा, यही सब वर्णन चल रहा है अभी भी। इस कारण यह शरीर राग द्वेष एवं मोह के अभाव का ज्ञापक है। उनके गुणों की तो बात आएगी, अभी तो शरीर से शुरुआत कर रहे हैं, और रागादि का अभाव भी भगवान महावीर में असत्य भाषण के अभाव को प्रकट करता है। देखो क्या है, ये तो सिद्धांत प्रवेशिका की स्टार्टिंग में ही हमने बहुत बार देखा है। क्या झूठ कोई क्यों बोलता है, बोलो प्रेरणा भी, राग मोह से और अज्ञान से। छोटे बच्चे को पूछा कि तुम्हारे पापा जी कितना पैसा कमाते हैं, कुछ भी बोलेगा, 10 कमाते हैं, 25 कमाते हैं, 100 कमाता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं ना, अज्ञान है। तो अज्ञान से या कषाय से, अभी इनके तो कोई रागादिक का अभाव ही है, तो असत्य बोलने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है उनके। और सर्वज्ञता है, कुछ उनके ज्ञान में आया नहीं इसलिए कुछ भी कह दिया, ये भी बात नहीं हो सकती। देखो, रागादिक का अभाव भी भगवान महावीर में असत्य भाषण के अभाव को प्रकट करता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य के अस्तित्व का विरोध है। झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है तो झूठ बोलने रूपी कार्य भी वहां नहीं होगा, और असत्य भाषण का अभाव भी आगम की प्रमाणता का ज्ञापक है। ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आगम प्रमाण क्यों है वो बात चल रही है। तो पहले वो राग रहित ये बात सिद्ध की, तो ये उनका जो कथन है, उनकी जो वाणी है वो प्रमाण है, आगम है वो प्रमाण है, ये बात सिद्ध होती है। इसलिए द्रव्य से अर्थकर्ता की प्ररूपणा करना चाहिए। हमने देखा पहले मंगल बताया, फिर निमित्त बताया, फिर ग्रंथ का प्रमाण कितना है वो बताया, उसके बाद क्या बताया था, नाम बताया, वेदना उसका नाम है, और कर्ता बता रहे थे। कर्ता में ग्रंथकर्ता और अर्थकर्ता की बात चल रही थी, और अर्थकर्ता भगवान महावीर है तो उनके द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा यहाँ बातें प्ररूपणा हो चल रही। तो उसमें ये शरीर की बात आ गई, शरीर के द्वारा वे राग रहित है सिद्ध किया, और राग रहित होने के कारण उनकी वचन की प्रमाणता बताई। अब क्षेत्र बताएंगे, तीर्थ की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है, कौन सा तीर्थ है ये सिद्ध क्षेत्र के, कौन सा तीर्थ के समय शिखर, हाँ ये उपदेश को तीर्थ कहते हैं। तो ये उपदेश किस क्षेत्र में हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तीर्थ की उत्पत्ति है ना, उपदेश की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है, यानी उनके जो समोचरण आदि लगे थे वहाँ उनका जो दिव्य ध्वनि खिरी थी और उसके द्वारा जो उपदेश आया हमें मिला था वो कहाँ हुआ। जो समोचरण मंडल सूर्य मंडल के समान समवृत्त अर्थात गोल है, क्या कहते हैं समोचरण मंडल कहाँ, वो भी आकाश में स्थित है ना, तो सूर्य मंडल के समान समवृत्त अर्थात गोल है। 12 योजन प्रमाण विस्तार और चाहिए आयाम से युक्त है, यानी उसका डायमीटर कितना है 12 योजन। विस्तार और आयाम का अर्थ है वो लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी। एक इंद्रनील मणिमय शिला से घटित है, क्या बात है। ये पता नहीं था, अभी कुछ कुछ बातें देखो। एक ही इंद्रनील मणिमय शिला से घटित है, एक इंद्रनील मणिमय से वो बनी है पूरी, पूरा समोचरण। 5 रत्नों व सुवर्ण से निर्मित, 5 अलग अलग रत्न और सुवर्ण उसमें लगे हैं, और प्रकाशमान तेज से संयुक्त इसे 4 उन्नत गोपुर युक्त धूलिसाल से जिसका पर्यंत भाग घिरा हुआ है, क्या कहते हैं, ये मालूम है किसको कहते हैं धूलिसाल, जो आउटर एकदम जो है ना कोट उसकी दीवार, उसको धूलिसाल कहेंगे। आउटर लिमिट पर्यंत भाग का अर्थ होता है क्या, अंतिम एंड, एंड में घिरा हुआ है, जैसे किले की चहुं और वो दीवार बांधते हैं ना तट, इसको क्या है, इसको मैं फिर पढ़ती, ये बहुत अच्छा वर्णन है, देखो देखो फिर कहते हैं। हमने क्या देखा, एक इंद्रनील मणिमय शिला से घटित है, एक शिला में से ये सब बनाए हैं। दूसरी बात, अभी उसका जो तट है उसको धूलिसाल कहा है, वो काहे से बना है, तो 5 रत्न व सुवर्ण से निर्मित है और प्रकाशमान तेज से संयुक्त ऐसे 4 उन्नत गोपुर युक्त धूलिसाल से। गोपुर यानी ऐसे बड़े बड़े तोरण ऐसा होता है, यह प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, 4 बाजू 4 उसके प्रवेश द्वार हो गए, और प्रवेश द्वार में भी उस कुछ कमान वगैरह आगे होगी ऊपर। धूलिसाल से जिसका पर्यंत भाग घिरा हुआ है उसके भीतर तीन प्राकारों से वेष्टित तीन कटनी युक्त पीठ के ऊपर स्थित मणिमय दैदीप्यमान दीर्घ चार मानस्तंभों से विशिष्ट व विकसित उत्पल कंदोट एवं अरविंद आदि पुष्पों से व्याप्त ऐसी नंदोत्तरादि वापियों के समूह से जिसमें धूलि प्राकार का अभ्यंतर भाग परिपूर्ण है। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा वर्णन है। ये धूलि साल वो बाहर का तट हुआ, उसके अंदर क्या है? तो अंदर जल है, अंतिम जो तट है उसके अंदर जल है, तो उसको जल को क्या कहा? नंदोत्तरादि वापियों के समूह से, वहां भी वापियां हैं। ये वापियां हमने कहाँ देखी थी, याद है? नंदा नंदोत्तरा वगैरह वगैरह, हाँ, कौन से कहाँ देखी थी? नंदीश्वर द्वीप में वहां वापियां होती है। अभी हमने उसके नाम भी नहीं देखे थे वहां पर, वापिया ने वो जल सरोवर, सरोवर ने भी उसको कुआ, वापिया ने, वापी का अर्थ होता है कुआ, परंतु ये कितने लाख लाख योजन वाले होते हैं, इसको वापी कहा, जलाशय कहेंगे हम। जैसे खंदक होता है ना, जैसे कोई किला आपने देखा होगा कोई, तो उसमें बाहर तट होता है, उसके अंदर वो खाई होती है, उसमें पानी होता है। तो यहाँ बाहर के, अभी यहाँ तो कोई शत्रु की बात नहीं कि जो नहीं प्रवेश करे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर भी बाहर जो तट है उसके अंदर ये पानी वाला भाग है, तो उसको कहते हैं नंदोत्तरादि वापियों के समूह से जिसमें धूलि प्राकार का, धूलि प्राकार यानी वो धूलि साल बाहर का जो तट है उसके अंदर वाला अभ्यंतर भाग परिपूर्ण है। अभी फिर इसको पढ़ती हूँ मैं, ये धूलि साल कोट है उसके अंदर क्या है? तीन प्राकारों से वेष्टित और तीन कटनी युक्त पीठ के ऊपर स्थित ऐसा क्या है? मणिमय दैदीप्यमान दीर्घ चार मानस स्तंभों से विशिष्ट, अच्छा ये वापिया है, अच्छा अच्छा हाँ, ये उसके अंदर वापिया है, वापियों के बीच में क्या है? मानस स्तंभ है, पर मानस स्तंभ कैसे है? उसको भी तीन प्राकारों से वेष्टित है, उसको भी तीन कोट है मानस स्तंभ के चौं ओर भी, और उसके ऊपर तीन कटनियां, कटनियां क्या कहते हैं? ऐसा स्ट्रेट फिर अंदर, हमने वो मेरू पर्वत के कटनी देखी थी, जैसे 500 योजन ऊपर जाकर एक कटनी आती है, वहाँ नंदनवन है, फिर ऊपर जाके 62,500 योजन ऊपर जाके फिर एक कटनी आती है 500 योजन अंदर, वहाँ सोमनसवन है, उसको कटनी कहते हैं। ऐसे मानस स्तंभ हमने देखा था, ये कहीं भी देखो आप, ये ध्वजा उभरती है या मानस स्तंभ होता है, उसके नीचे क्या है? स्ट्रेट होता है, फिर अंदर का, फिर और स्ट्रेट होता है, फिर अंदर, फिर और ऊपर, फिर अंदर, इसको कटनी कहते हैं। तो ये तीन तीन कटनियों से सहित है, यानी तीन तो उसको प्राकार है, तीन प्राकारों से तो वेष्टित है और तीन कटनियों से युक्त है, ऐसा जो पीठ है यानी मानस स्तंभ का बेस, उसको पीठ कहते हैं, चबूतरा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर स्थित कैसे मानस स्तंभ है? मणिमय है यानी रत्नमय है, दैदीप्यमान है, दीर्घ यानी बहुत ऊंचाई वाले है, चार मानस स्तंभों से, चारों ही दिशा में एक एक मानस स्तंभ है। पहले आउटर लेयर हमने देखा धूलि साल तट है, उसके अंदर मानस स्तंभ है, यानी चार दिशाओं में चार वापियां है और उसके बीच में मानस स्तंभ है, चार मानस स्तंभों से विशिष्ट व, अब ये नंदोत्तरा का विशेषण है, नंदोत्तरादि वापिया है ना, अब ये कैसी है? विकसित यानी फूले हुए, विकास हुआ है, फूलों की बात चल रही भी, क्या क्या लिए? उत्पल कंदोट और अरविंद, तीनों ही कमलों के नाम हैं, फिर भी उसमें जो कोई जातियां उनकी अलग अलग है, जैसे पद्म भी कमल को कहते हैं, कुमुद भी, कुमुदिनी भी कमल को कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, हाँ, उत्पल भी कहते हैं, सरोज है, उसके अलग अलग, परंतु कुमुदिनी कहने में और पद्म कहने में अलग अलग होते हैं। कोई तो सूर्य विकासी कमल होते हैं और कोई चंद्र विकासी कमल होते हैं, ये उसकी जातियाँ अलग अलग होती है और उस अकॉर्डिंगली उसके नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ तीनों ही नाम लिए, उत्पल, कंदोट यानी नील कमल एवं अरविंद आदि पुष्पों से व्याप्त, जिनमें ऐसे अलग अलग प्रकार के कमल खिले हुए, विकसित यानी खिले हुए कमलों से व्याप्त ऐसी वापिया, उसके नाम है नंदोत्तर आदि, ते नंदा नंदोत्तरा वगैरह उसके नाम है। ऐसे वापियों के समूह से जिसमें धूलि प्राकार का अभ्यंतर भाग परिपूर्ण है, यानी वो धूलि प्रासाद के अंदर में ही ऐसी वापिया है, जो नौ निधियों से सहित व 108 संख्या से उपलक्षित, आठ मंगल द्रव्यों से परिपूर्ण, ऐसे चार गोपुरों से व्यवहित, स्वच्छ जलयुक्त खातिका से वेष्टित है। खातिका ने वो खंदक, हाँ, ये गोपुर जो है उसमें आठ मंगल द्रव्य है, 108 संख्या से उपलक्षित आठ मंगल द्रव्य, 108 मंगल द्रव्य है उसमें, आठ मंगल द्रव्य प्रत्येक ही 108 है ऐसा कहते हैं। ये गोपुर वगैरह जो कहे हैं, अभी वहां जो कोई प्रवेश द्वार होगी उसमें ये सारे मंगल द्रव्य वगैरह होंगे। इसके आगे चार विधियों से व्यवहित व नाना प्रकार के पुष्पों के भार से उन्नत ऐसे वल्लीवन से परिवेष्टित है। पहले हमने ये जो ऐसे बाहर की ओर ये ऐसा धूली साल देखा, उसके अंदर ये वापी यानी जल का वर्णन देखा, और उसी में हमने वो गोपुर यानी अभी जो कुछ वहां रचना होती होगी गोपुर की, या चार बाजू चार है उसमें मानस स्तंभ भी हमने देखे थे। अब यहाँ क्या दिखते देखो, वो जल से खातिका ने वो सब खंदक है, वो सब बातें इसी में आ गई, वापिया भी और खंदक भी उसमें, उसके अंदर क्या है, तभी चार वीथिया, वीथिया ने वो मार्ग, बहुत बड़े बड़े मार्ग वीथी। तो ये जो वीथी है बाहर से अंदर तक, ये जहां मानस स्तंभ है ना वहां से चार मार्ग अंदर तक चले जाते हैं, उसको वीथी कहा है। तो इसको क्या कहते, देखो चार वीथियों से व्यवहित, व्यवहित यानी खंडित, ये मार्ग आएंगे ना बीच में, तो ऐसा कोई राउंड अभी रचना नहीं होगी, अभी ये तो मार्गों से वो खंडित होगी। तो चार वीथियों से व्यवहित और नाना प्रकार के पुष्पों के भार से उन्नत ऐसे वल्ली वन से परिवेष्टित है। वल्ली यानी वृक्ष, वल्ली कहते ना हम, वल्ली नाम सुना है ना, हाँ, वो वल्ली यानी वो किसी आदमी को कहते हो ये वल्ली है, वो बात नहीं है। तो ये यहाँ इसके अंदर वन है, तो ये वन कैसे है, तभी ये वन ऐसा कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में मार्ग आया फिर यहाँ वन होगा फिर बीच में मार्ग आया, इसलिए चार वीथियों के द्वारा व्यवहित कहा। और ये वन जो है वो बहुत प्रकार के पुष्प और फलों से, वृक्षों से वो बने हुए, वो वन है, उसके वन है। इसके आगे अत्यंत रक्त सुवर्ण से निर्मित, रक्त सुवर्ण ने लाल सुवर्ण, 108 संख्या युक्त आठ मंगल द्रव्य, यानी प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 आठ मंगल द्रव्य ना, जो कितनी संख्या में 108, नौ निधियों एवं समस्त आभरणों से सहित धवल अत्यंत ऊंचे चार गोपुर युक्त प्राकार से सुशोभित है। यहाँ जो कुछ प्राकार हो गए, ये तोरण वाले प्राकार ने बड़े बड़े महल ऐसा भी अर्थ उसको कहते हैं, इसमें ये प्राकार हो गए अंदर, यहाँ इसके अंदर वाला वो प्राकारों से संयुक्त है। इसके आगे चार गोपुर द्वारों के अभ्यंतर भाग में दोनों पार्श्व भागों में स्थित जलते हुए सुगंध द्रव्यों के गंध से भुवन को आमोदित करने वाले ऐसे दो दो धूप घटों से संयुक्त है। यहाँ वहाँ अंदर ये जो यहाँ कोई प्राकार है उसके अंदर यहाँ घट है, दो दो धूप घट है यहाँ पर, धूप के घट। इसके आगे तीन भूमियों से संयुक्त अत्यंत धवल चांदी की राशि से निर्मित अपने अवयवों में लगे हुए सुरलोक के श्रेष्ठ मणि समूह की अनेक वर्ण वाली किरणों से आच्छादित बजते हुए मृदंग समूह के शब्द से जीव लोक को बहरा करने वाले तथा 32 अप्सराओं से संबद्ध 32 नाटकों से सहित ऐसे दो दो प्रासादों से भूषित है। ये यहाँ अभी ये सब देवों के प्रासाद है, अभी ये विथियों के बाजू में, तो उसमें ये अप्सराओं के नृत्य वगैरह सब चलते रहते हैं, तो देवों के मंगल वो शब्द भी ध्वनि भी सुनाई देते हैं। अभी यहाँ देखा ना हमने तीन तीन भूमियाँ देखी, धवल चांदी से निर्मित ऐसी तीन भूमियाँ हैं। और कैसे है अपने अवयवों में लगे हुए ये अप्सराएं हैं, वह तो वहां के देवलोक के रत्न वगैरह आभूषण पहनेंगे ना, तो उनके अवयवों में ये सारे रत्न लगे हैं, तो उनके किरणों से शोभित हो रहे हैं। तीन भूमियों से सहित यानी वो तीन मंजिली वाले प्राकार है वहां पर, यानी वहाँ तो मृदंग के शब्द हो रहे हैं, अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है। हम देखते हैं ना कि ये जो जिसमें जिसको इसी में मजा आती है ना, वो उधर ही रुक जाते हैं, अंदर तक पहुँचते नहीं है, वहाँ की वो नाटकशाला देखते ही बैठते हैं। दो दो प्रासादों से भूषित है, चार महापथों के बीच में, जिसको वीथि कहा था, महापथ कहा है इसको, चार महापथों के बीच में स्थित मृदु सुगंधित एवं नेत्रों को हरने वाले वर्णों से युक्त सुरलोक के रत्नों से निर्मित ऊंचे वृक्षों से संयुक्त अनेक प्रकार की उत्तम सुगंध में आसक्त हुए भ्रमरों के मधुर शब्द से विराजित नाना प्रकार के पर्वत नदी सरोवर व मंडप समूहों से मंडित तथा चारों पार्श्व भागों में स्थित जिनेंद्र चंद्र के प्रतिबिंब के संबंध से पूजा को प्राप्त हुए चैत्य वृक्षों से सहित ऐसे अशोक सप्तपर्ण चंपक और आम्र वनों से अतिशय शोभित है। यानी अभी ये चार महामार्गों में ये चैत्य वृक्ष भी है, उसका भी हमने वर्णन देखा। वो एक एक चैत्य वृक्ष है, वो वनों से वेष्टित है। ये महामार्ग भी बहुत बड़े होते हैं, उनका अभी आएगा उसका कितना प्रमाण है क्या है अनेक योजनाओं के होते हैं वो भी, क्योंकि पूरा 12 योजन का देखा ना हमने, तो उसमें तो ये तो मार्ग भी बहुत बड़े होते हैं। अब योजन का प्रमाण तो कितना होता है बड़ा, कितना होता है माँ वो मालूम है। अच्छा हाँ देखो, इसके आगे चांदी से निर्मित चार गोपुरों से संबद्ध, गोपुर का अर्थ समझ में, जो हम मंदिरों में देखते बाहर ऐसे तोरण जैसी रचना होती है उसको गोपुर कहते हैं, वो सुवर्ण से निर्मित ऐसी वन वेदिका से वेष्टित है। इसके आगे चार वीथियों के मध्य भागों में स्थित स्थिर व स्थूल स्वर्गलोक के मणिमय स्तंभों से संयुक्त प्रत्येक 108 संख्या से युक्त एक एक दिशा में 10 से गुणित 108 यानी 1080 ऐसी माला अंबराध्व अर्थात सूर्य और चंद्र अब्ज मयूर गरुड़ गज सिंह वृषभ हंस और चक्र के चिन्ह से युक्त ध्वजाओं के समूह से घिरा हुआ है, क्या कहते हैं? ये जो विधि है ना, उसके मध्य भागों में क्या है कि स्वर्गलोक से निर्मित ऐसे जो मणिमय स्तंभ है, और वो कितने हैं? 108, 108, और उसमें माला ध्वजा आदि इसके समूह से घिरा हुआ है। इसके आगे 108 मंगल द्रव्य और 9 निधियों को धारण करने वाले 4 गोपुरों से मंडित अनेक प्रकार के मणिव रत्नों से विचित्र देह वाले तथा सैकड़ों आभरण व तोरणों से सहित द्वारों से संयुक्त ऐसे सुवर्ण प्राकार से युक्त है। उसके आगे वो सुवर्ण के प्राकार आदि है, महल आदि है। उसके भीतर पूर्व के समान जलते हुए सुगंध द्रव्यों को मध्य में धारण करने वाले 2-2 धूप घटों से युक्त और मृदंग के मधुर शब्द से विराजित 3 भूमियों वाले धवल घरों से उन्नत है। 3 भूमियों वाले घर है ना, 3 मंजिल वाले भूमि का ना, एक जमीन वाले, एक ऊपर वाले, फिर और एक ऊपर ऐसे। वहां पर ही 4 विधियों के अंतरालों में संकल्पित नाना प्रकार फलों के देने में समर्थ गुंजार करने वाले भ्रमर व सुंदर गले वाली कोयलों के समूह से व्याप्त अपने किरण समूह से आकाश को आच्छादित करने वाले अनेक प्रकार के पुर, पर्वत, नदी, सरोवर, हिंडोलो एवं लता ग्रहों से संयुक्त, ये जो सब वर्णन चल रहा है ना, ये विधियों को छोड़कर अभी हम बाहर से अंदर अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या बातें, कैसे वन है वो, उनमें वहाँ पर्वत भी है, नदियाँ भी है, सरोवर भी है, वो कितना बड़ा है। 12 योजन को कैन यू इमेजिन, 12 योजन कितना बड़ा होता है। तो ऐसे भी यहाँ ये कौन कौन से महल है, कौन कौन से वन है, उसमें क्या क्या बातें, इसकी बात चल रही है। तो 4 गोपुरों से संबद्ध सुवर्णमय वन वेदी का रूप मर्यादा वाले तथा जिन प्रतिमाओं से दीप्त, सिद्ध प्रतिमाओं से दीप्त, सिद्धार्थ वृक्षों से पवित्र किए गए ऐसे कल्प वृक्ष वनों से विभूषित है, यानी वो कल्प वृक्ष वन है और उसी को सिद्धार्थ वृक्ष कहा है क्योंकि उसमें सिद्ध प्रतिमाएं होती है। ये चैत्य वृक्ष कहते हैं, उनकी चैत्य होते हैं उसमें, वो जिन बिंब रहते उसको चैत्य वृक्ष भी कहते हैं, यहाँ सिद्धार्थ वृक्ष कहे हैं। इसके आगे पद्मराग मणिमय देह से संयुक्त अपने अंग से निकलने वाले तेज से आकाश को ताम्रवर्ण करने वाले अपने सब अंगों से जिनेन्द्र चंद्रों को धारण करने वाले मणिमय तोरणों से अंतरित 4 विधियों के अंतरालों में स्थित धवल व निर्मल प्रासादों से विभूषित ऐसे विधियों के मध्य में स्थित 9-9 स्तूपों से व्याप्त है। ये स्तूप जो है ना, पद्मराग मणिमय है वगैरह वगैरह। इसके आगे आपने स्तूप देखे नहीं होंगे, स्तूप यानी पिलर नहीं होता, स्तूप यानी ऐसा राउंड होता है, डोम जैसे होते हैं स्तूप। ये अशोक के स्तूप नहीं देखे आपने, रांची वगैरह में होते हैं, इसको स्तूप कहते हैं। खामला को स्तंभ कहते हैं, ये स्तूप का है ना इसमें। इसके आगे आकाश स्फटिक मणि से निर्मित तथा 108 अष्टमंगल द्रव्यों एवं 9 निधियों से सनातनी युक्त वो पद्मराग मणि से निर्मित गोपुरों वाले प्राकार से अभिनंदित है। प्राकार यानी वहाँ जो ये सारे देवों के भवन है ना, वहाँ पर उनके प्राकार होते हैं। पीठ की प्रथम कटनी यानी बाहर की ओर हमने देखे, वो तट होते हैं, फिर जल होता है, फिर इतने सारे वन होते हैं अंदर अंदर अंदर, फिर उसमें प्रासाद भी होते हैं। अब कहते आगे चले हम, तो पीठ की प्रथम कटनी वह स्फटिक प्राकार से लगी हुई और स्फटिकमणि शिला से निर्मित देह वाली 16 भित्तियों से विभक्त किए गए मणिमय स्तंभों से उद्धृत व एक आकाश स्फटिक निर्मित शिला मंडप से आच्छादित। ये आकाश स्फटिक वो उसका नाम है स्फटिक का, आकाश स्फटिक अत्यंत निर्मल स्फटिक, उसको आकाश स्फटिक कहते होंगे। यानी एक ही वो स्फटिक कितना बड़ा होगा, एक ही स्फटिक में से ये शिला मंडप से आच्छादित है। स्वर्ग लोक के श्रेष्ठ सुगंध द्रव्य को, गंध द्रव्य को धारण करने वाले चतुर्विध मुनिसंग अभी क्या कहते हैं, ये ऐसे करते 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 अभी अंदर तक आ गए। आपने 12 सभा सुनी होगी, तो 12 सभा ने अभी, ये तो बीच में तो 4 वीथी है, तो एक एक में 3-3 होगी ना, हर एक में अभी 3-3 ऐसी सभाएं होगी, और बीच में तो वो उनके वीथियां है, महामार्ग है उसका। तो इसलिए क्या कहा, देखो इसलिए ये 16 भित्तियां क्यों कही, यदि 12 कोठे डायरेक्ट होते, 12 कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अरे वाह मैंने अंदाज से निकाले, हाँ तो उसकी भित्तियां कितनी होनी चाहिए थी, 12 कोठे करने तो भित्तियां कितनी, इसके आगे से काउंट करेंगे, यहाँ तक काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बीच में 12 कोठे होने चाहिए, राउंड कही है ना हमने, परंतु यहाँ कितने कहे, 16। क्यों, बीच में तो 4 महामार्ग है, ये वीथियां हैं, तो इसलिए एक एक दिशा में ये 4 वीथियां हैं, ये कोठों को डिवाइड करने वाली, क्योंकि हर एक कोठे में अलग अलग, कहीं मुनि संघ है, कहीं आरिकाएं हैं, कहीं देव, ये देव है, देवियां हैं, मनुष्य है, वगैरह वगैरह, तीर्यंचों का कोठा, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से कोठे होते हैं। तो इसलिए 16 भित्तियां लिखा, देखो ऊपर की लाइन में, पहली लाइन में, स्फटिक मणि शिला से निर्मित देह वाली, ये देह किसका, ये भित्तियों का देह कह रहे हैं, ये कोई मनुष्य के देह की बात नहीं है। फिर पढ़ा देखो, स्फटिक मणि शिला से निर्मित देह वाली भित्तियां है ना, 16 भित्तियां, यानी 16 भित्तियां काहे से बनी है, स्फटिक मणि से, स्फटिक मणि के शिला से बनी हुई है, उनके द्वारा विभक्त किए गए, कौन, ये 12 कोठे जो है वो ये 16 भित्तियों के द्वारा विभाजित है। अब कैसे है, मणिमय स्तंभों से उद्धृत, वहां स्तंभ है ने, अभी स्तंभ का अर्थ क्या है, ये अभी स्तूप नहीं कह रहे, अभी स्तंभ है ने खंबे, मणिमय खंभों से उद्धृत, यानी अभी वो ऊपर उठा हुआ पकड़ा हुआ क्या है, मंडप है, इसको मंडप कहेंगे। ये मंडप कैसे है, अभी ये तो भित्तियां हैं, बीच में खंभे भी हो गए और खंभों के ऊपर छत भी होगी, वो छत भी काहे की है, आकाश स्फटिक मणि की। देखो मणिमय स्तंभों से उद्धृत, यानी खंभे भी मणिमय है, और उसके द्वारा क्या पकड़ा हुआ है, क्या उद्धृत, यानी ऊपर उसके क्या है, तो कहते एक आकाश स्फटिक निर्मित शिला मंडप से आच्छादित, पूरा ही शिला मंडप ही है, वो शिला का ही मंडप है, उसका ऊपर का जो हम कहते हैं वो कपड़ा डालते हैं ना, आजकल हम कोई मंडप बांधते तो क्या करते हैं, खंभे ऐसे बांबू लगाते हैं और फिर छत उसका आच्छादन क्या किससे करते हैं, कपड़े से, वो कलरफुल कपड़ा होगा कोई, तो ये काहे से बना है छत भी, आकाश स्फटिक शिला से बना हुआ है, खंभे भी रत्नों के हैं, मणिमय है ना, और वो दीवारें भी स्फटिक की है, शिला मंडप से आच्छादित, स्वर्गलोक के श्रेष्ठ सुगंध द्रव्य को धारण करने वाले, ऐसे ये किसका वर्णन चल रहा है, 12 कोठों का, ऐसे 12 कोठे वाले, 16 भित्तियों से विभाजित ऐसे 12 कोठे, ये 16 क्यों कहा, उसका ख्याल है ना, बीच बीच में तो मार गए, तो इसलिए इसके जो एक एक दिशा में 4-4 भित्तियां होगी, उनके खंबे सुअर मणिमय है और उसके ऊपर पूरा आच्छादन करने वाला जो मंडप है वो भी स्फटिक शिला का है। अब उसमें कौन कौन है देखते हैं, अभी आपको याद करना है तो उसको नंबर दे दो। चतुर्विध मुनि संघ, फिर कल्पवासिनी, मनुष्यनी, ज्योतिष्क देवी, व्यंतर देवी, भवनवासी देवी। अभी देव और देवियों के लिए अभी अलग अलग कोठे, वो भी भवनवासियों के लिए अलग, व्यंतरों के लिए अलग, ज्योतिषियों के लिए अलग। फिर अभी ये छह हो गए ना, अभी सातवा, भवनवासी देव, वान व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, फिर मनुष्य और तिर्यंच, क्रमशः संयुक्त ऐसे 12 कोठों से विराजित है। ये सारा जो अमुक से निर्मित ऐसे खंभों वाला, ऐसे सुगंध वाला, ये किसका वर्णन चल रहा था? 12 कोठों का। समोसरण में जो आरे के समान ऐसे वो भित्तियाँ होगी ना, जैसे साइकिल के चाक में कैसे लगे होते, वैसे भित्तियाँ ऐसी होगी, सेंटर से बाहर की ओर ऐसे, ये कोठे भी बाहर की ओर चौड़े होंगे ऐसे। अब जिसके मस्तक के ऊपर वर्धमान भगवान रूपी सूर्य स्थित है, ये कोठों की बात हो गई, अभी ये बीच वाले, अभी जो कोई सेंटर में होता है ना उनका, ये तो मंडप हो गया, कोठे हो गए। अभी बीच में जो तीन पीठ होते हैं और उसके ऊपर जो सिंहासन होता है वगैरह वगैरह, अशोक वृक्ष होता है, वो सब की वर्णन है, उसका आएगा यहाँ। जिसके मस्तक के ऊपर वर्धमान भगवान रूपी सूर्य स्थित है, जिसकी द्वितीय कटिनी पर 8 ध्वजाएं व मंगल द्रव्य रखे हुए हैं, जो प्रथम कटनी पर मस्तक पर स्थित धर्मचक्र से विराजित यक्षों के शरीर से संयुक्त है। देखो उसके नीचे जो है ना पाद पीठ कहते ना, तीन पीठ होते हैं, यानी कटनी के द्वारा वो नीचे का, उसके पहली जो कटनी है उसमें वो यक्ष ऐसे धर्मचक्र सिर पर रखे हुए। आपने कभी समोसरण मंदिर देखा है तो वहां देखना, ये दिखाया हुआ होता है उसमें, पहले कटनी पर होता है ये। देखो क्या कहा, पहले कटनी पर क्या, मस्तक पर स्थित धर्मचक्र से विराजित यक्षों के शरीर से संयुक्त है। प्रथम कटनी पर यक्ष अपने सिर पर धर्मचक्र धारण करके वहां खड़ा है, मणियों से निर्मित है तथा उन्नत वर्धमान जिनके प्रभा मंडल युक्त तेज से सहित है, ऐसे तीन कटनी युक्त पीठ से, ये पीठ का वर्णन चल रहा है। पीठ कैसा है अभी शुरू से फिर पढ़ते हैं कि उस पीठ के मस्तक के ऊपर भगवान रूपी सूर्य है। तीन है ना पीठ, एक के ऊपर एक, यानी पूरा पीठ है, उसके कटनी है, पहली कटनी, फिर दूसरा, फिर दूसरी कटनी, उसके ऊपर तो सिंहासन भगवान वगैरह सब है, तो सबसे ऊपर भगवान है। द्वितीय कटनी पर क्या है, 8 ध्वजाएं हैं और मंगल द्रव्य है, 8 मंगल द्रव्य भी होते हैं और ध्वजाएं भी होती है। और प्रथम कटनी पर क्या है, ऊपर से हम उनको बता रहे, देखो अभी ऐसा हम सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ऊपर तो भगवान स्थित है, ये गोलाकार है ना अभी नीचे, तो यहाँ ये नीचे से दूसरी कटनी और ये पहली कटनी, तो यहाँ पर ये धर्म चक्र पकड़ कर चारों बाजू वो यक्ष है चक्र पकड़ कर रहे, और दूसरे में 8 मंगल द्रव्य और ध्वजाएं हैं, और सबसे ऊपर भगवान विराजमान है। उन्होंने ऊपर से नीचे बताया, सबसे ऊपर भगवान है, दूसरी कटनी पर 8 मंगल द्रव्य और ध्वजाएं हैं, और पहले कटनी पर यक्ष धर्म चक्र को सिर पर ऐसे मस्तक पर पकड़े हुए हैं। ये वाक्य पढ़ती हूँ फिर हम बंद करेंगे। मणियों से निर्मित है, ये पीठ की बात चल रही है, तथा उन्नत वर्धमान जिनके प्रभा मंडल युक्त तेज से सहित है, ऐसे तीन कटनी युक्त पीठ से ऐसी जो कटनी जो पीठ कैसा है, तीन कटनी युक्त पीठ है। युक्त पीठ से अंधकार को नष्ट करने वाला है। वे बाकी बात हम कल करेंगे, इसको फिर पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये समोसरण का इतना डिटेल वर्णन है इसमें। हाँ, इसे पढ़ा था हमने पहले भी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।